अंधस्य ज्ञानं जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो महावदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरस्तुते गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय तदाले कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तदभक्ताय यं प्रभ्यन्तमनुपेतमपेत द्वैपायनो विरह का तरया पुत्रे तन्मयतया तर्वो विनेदु तं सर्वभूत हृदय तवैवास्मी तवैवास्मी जीवामि त्वया विना इति विज्ञेयादि तं न माम चरणं मैं सप्रथम अपने परमाराध्यतम ओम विष्णु पाद अष्टोत्तर भक्ति प्रज्ञान के सर्वस्वामी महाराज के श्री चरण कमलों में अनंत कोटि साष्टांग दंड प्रणति ज्ञापन तत्पश्चात अपने शिक्षा गुरु शिशिला नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णु पाद शिशुन भक्ति प्रतिमा गौरस्वामी महाराज श्री चरण कमलों में अनंत कोटि दंड प्रणति ज्ञापन हम लोग राय रामानंद संवाद संवाद के संबंध में अनुशीलन कर रहे हैं। राय रामानंद जी ने कहा प्रेम भक्ति सर्वशब्द सार तो उसके लिए श्रीमद् भागवत से दो श्लोक पद्यावली से दो श्लोक इन्होंने ग्रहण किया। पहला लिया नानोपचार कृत पूजनम अर्थ बंधो प्रेम नैव भक्त सुहृदम हृदय सुभिप्रितम विद्युतम स्यात् जावत खुजंत जठरे जरठा पिपासा तावत सुखाय भवतो अनुभक्षते। यदि हृदय में प्रेम है तो नाना उपचार के साथ में सेवा को प्रभु ग्रहण करके प्रसन्न होते हैं, और नाना उपचार रहने पर भी प्रेम नहीं है तो वो सुखी नहीं होते हैं। जिस प्रकार से भूख और प्यास रहती है तब तो किसी भी वस्तु में खाद्य या पेय में सुख मिलता है, आस्वादन मिलता है, यदि भूख और प्यास न रहे तो किसी वस्तु में सुख और तृप्ति नहीं है। एक तो श्लोक ये बतलाया और दूसरा श्लोक बतलाया उसी पद्यावली का, कृष्ण भक्ति रस भाविता मति प्रियतां कुतोपि यदि लभ्यते तत्र लौल्यम अपि मे कलम कोटि जन्म सुकृति न लभ्यते। कृष्ण भक्ति रस भाविता मति यदि सौभाग्य से जन्म जन्मांतरों के सुकृति से या किसी प्रकार से यदि कृष्ण रस भावित मति कहीं मिल जाती है, कृष्ण भक्ति रस विभावित ऐसी बुद्धि ऐसी मति जो कृष्ण के रस में पगी हुई हो, कहीं ऐसे मिल जाए क्रियता उसे खरीद लो। कुतोपि यदि लभते कहीं भी मिले, यदि कृष्ण भक्ति रस में शराब हो मति मिल जाए तो ले लो। तत्र लौल्यम अपि मुकुल, उसका मूल्य क्या है? एकमात्र लौल्य, लौल्य ही उसके लिए एकमात्र गति है। लोभ ही उसके लिए एकमात्र गति है। जन्म कोटि 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 जन्मों की सुकृति या पुण्य से वो नहीं है। तात्पर्य क्या है? पहला जो बतलाया नानोपचार कृतम पूजनम आर्त बंधो, वो वैधि भक्ति, और ये कृष्ण भक्ति रस वैधि भक्ति नहीं है, ये रागानुगा भक्ति है, अनुरागमयी भक्ति। भक्ति रसामृत सिंधु में रागानुगा और वैधि भक्ति का लक्षण बतलाया गया। जहां पर राग, राग माने कृष्ण के प्रति अनुराग स्वाभाविक रूप में हो, लोभमयी लोभमयी हो तो उसको रागानुगा भक्ति कहते हैं। जहां पर राग अनवाप्तम, कृष्ण के प्रति राग ममता मई जो अनुराग है वो नहीं है, लोभ नहीं है, तो उसको वैधि भक्ति से। वैधि भक्ति कहां तक ले जाएगी? वैकुंठ तक गति है, ऊपर में गति नहीं है अधिक से अधिक। और रागानुराग कहां ले जाएगी? एकदम प्रज तक ले आ जाए। इसलिए दोनों भक्तियों का यहां पर विवरण दिया, विचार दिया। जहां पर ऐसे ही बतलाया गया एक बतलाया गया शास्त्र अवधारणामयी भक्ति, शास्त्रों के पढ़ने से अध्ययन से उसके डर से यदि भक्ति नहीं की जाएगी तो कोटि जन्म में वो नरक में प्राप्त होगा। इसलिए भक्ति का आदर करना चाहिए, अनादर नहीं करना चाहिए। इस डर से यह हमारा कर्तव्य है जीव मात्र का भगवान का भजन करना, जिन्होंने हमको जन्म दिया। ये विधि के अनुसार में चलता है, शास्त्र अवधारणा में। और दूसरी है लोभमयी बात, भगवत कथाओं को सुनने से, दामबंधन लीला श्रवण करने से या और सब लीलाओं को श्रवण करने से यदि लोभ हो, जो कृष्ण जैसे यशोदा मैया, श्रीदाम, सुबल, गोपियां कृष्ण की सेवा करती हैं, वैसे हम भी सेवा करेंगे, ये लोभ यदि आ गया तो वहीं से रागानुगा। यदि रागानुगा भक्ति किसी कारण से उपस्थित हो गई तो उसके लिए श्रद्धा, निष्ठा इत्यादि की आवश्यकता नहीं रहती। एकदम रुचि से आरंभ करता है, गुरु पदाश्रय करके, वैसे गुरु को लाभ करके पदाश्रय करके एकदम रुचि से उसकी भक्ति आरंभ। रागानुगा का प्रारंभ वो पहले के निष्ठा इत्यादि उसमें पहले ही सेव होती है, इसलिए उसकी आवश्यकता नहीं होती है। इसलिए कोटि जन्म सुकृति न लभ्यते, मतलब क्या, कोटि कोटि जन्मों के सुकृति से साधु संघ होता है और साधु संघ के द्वारा भक्ति होती है, किंतु लोभमयी भक्ति जो है रागानुगा कोटि कोटि जन्मों की सुकृति से भी नहीं मिलती है। वो तो भगवत कृपा यदि हो, भक्तों की कृपा हो तो ये कहीं हो सकता है। इसलिए महत कृपा, उसमें भी भगवत कृपा महत कृपा के अनुगामिनी होती है। ऐसे भक्तों का यदि श्रवण किया जाए, जैसे सुखदेव गोस्वामी ने सुनाया परीक्षित महाराज, ये रागानुगा भक्ति हुई, उसमें भी कितनी उन्नत कोटि की हुई। इसलिए सबके अंदर में महत कृपा की आवश्यकता, साधु संघ, किंतु साधु संघ भी वैसा हो उच्च कोटि का, रागानुगा युक्त हो, विशेष करके रागानुगा में भी क्वचित जो रूपानुग हैं, रूपानुग का यदि हो तो बहुत ही सरल सहज हो जाता है। सभी रागानुग रूपानुग नहीं है, किंतु सभी रूपानुग रागानुगा हैं सभी। इसलिए ये दुर्लभ है, रागानुगा में भी रूपानुग जो है परम दुर्लभ है। इस तरह से एक चीज और समझो, यह प्रेम दो प्रकार का बतलाया, ऐश्वर्य ज्ञान युक्त, हमने इसको पहले भी बतलाया, और माधुर्य ज्ञान युक्त अथवा महात्म ज्ञान युक्त संभ्रम ज्ञान अथवा गौरव ज्ञान अथवा सेवा में संकोच, एक प्रकार का ये है। महात्मा ज्ञान युक्त कृष्ण का भगवान, कृष्ण भगवान है ये महात्मा, ऐश्वर्य ज्ञान युक्त वही, और गौरव अभी वो बतलाएंगे इसके विषय में, विशेष करके हम उसको पीछे से बतलाएंगे। अभी तुम अनुवाद पर
He develops a spontaneous desire. I also want to serve Krishna as they are serving Krishna. So this faith is called Dhammamayi Shraddha. So, we know that bhakti develops Rajo Shraddha, Tathasava Sangha, Bhajana Kriya, Anatta Niruti, Nishta, Ruchi. So Radhanuga Bhakti begins from here, from the stage of Ruchi. But Vaidhi Bhakti can be performed without any taste, because it begins from the stage of Rajo Shraddha. So, if one performs so many pious activities, he makes Sukriti. This Sukriti will lead to Sarvasangha. But 10 million words of pious activities, it will not bring one to Radha Marg. Then what is required? Mahat Kripa and Bhagavat Kripa. The mercy of a pure devotee and the mercy of Krishna. The mercy of Krishna is included in the mercy of the pure devotee. And whenever pure devotee gives mercy, Krishna's mercy follows behind in the wake of that. So, sadhu sangha is needed, but not ordinary type of sadhu. A very high class of sadhu, who himself is absorbing Radha Marg. And then, by associating with them, especially those who are not only Radha Nuga, but Rupa Nuga, by associating with them, naturally, this type of greed is attained. So, all of those who are Rupa Nuga, they are Radha Nuga. This is true. But everyone who is only Radha Nuga, they are not Rupa Nuga, because they don't have the speciality of following exclusively in the footsteps of Sri Rupa Goswami externally and Sri Rupa Nuga internally. So, such Rupa Nuga Vaishnavas, they are extremely rare. So now Srila Gurudev is explaining that prem is of two types. The first type is Aishwarya Gyan Yukta Prem, the love for Krishna, which is imbued with knowledge of his opulences. Sometimes it's called Mahatva Gyan Yukta, means imbued with knowledge of Krishna's Mahatva, his greatness. Sometimes it's called Gaurava Prem. Gaurava means that this love has within it feelings of awe and reverence. And therefore, it is also called Seva Sankoch. It means that the tendency to serve becomes restricted. So Srila Gurudev explained that he has already defined all the disadvantages of this Aishwarya Yukta Prem. So now we'll explain the second type of love, which is completely free from Aishwarya Yukta.
সকলে ঘুমাচ্ছে,
I don't know.
जब राधामानंद जी ने प्रेमा भक्ति को सर्वसाध्य सार बतलाया और उसमें भी एक वैदिक भक्ति संपन्न और दूसरी राधांगा से युक्त प्रसन्न हुए इहो है बतलाया। आगे कहा इसे और भी कुछ आगे हो तो कहो। अभी हम लोगों ने बतलाया ये बैकुंठ में शांतरस की प्रधानता है। यदि प्रेम है किंतु ऐश्वर्य भाव वहां है, गौरव संभ्रम भाव है, इसलिए सेवा की वासना को बढ़ने का अधिक अवकाश नहीं। अच्छे वैकुंठ में तो नहीं है, अयोध्या में रागानुगा भक्ति है कि नहीं? रागानुगा भक्ति है किंतु वही गौरव संकोचमयी है। महाप्रभु जी की इच्छा ये सुनने की नहीं है, वो क्रमशः कहां ले जाना चाहते हैं, ब्रज में ले जाना चाहते हैं, और जितनी प्रकार की भक्ति है वहां तक क्या क्या, मथुरा और द्वारका की भक्ति में भी ऐश्वर्य भाव छिपा हुआ है, गौरव भाव, सब जगह ये दास्य प्रेम ही प्रधान है, वो भी ब्रज का दास्य जैसा नहीं। इसलिए अयोध्या में अथवा द्वारका मथुरापुरी में रागानुगा भक्ति है किंतु गौरव भाव संभ्रम भाव संकोच सेवा का संकोच वहां पर आता है। इसलिए महाप्रभु जी की इच्छा क्या है, ब्रज में चलो, ब्रज में माधुर्यमयी शुद्ध प्रेममयी भक्ति है। इसलिए बोले ये यो है, आगे और चलो। राय रामानंद जी उनके भाव को समझ गए और तब बतलाया। राय कहे दास प्रेम सर्वसाध्य सार, दास प्रेम बतलाया। एक बार प्रेमा भक्ति की चर्चा हो रही थी और ले आए दास्य प्रेम, बीच में क्या छूट गया, शांतरस छूट गया। तो शांतरस क्यों छोड़ दिया, जान बूझ करके छोड़ दिया। वो भी ब्रज का भाव लाने के लिए, ब्रज का भाव, वो जो कहा है वो पूर्ण रूप से ब्रज में वो लगता है, द्वारका में मथुरा में या बैकुंठ इत्यादि में संभव नहीं है। वो नहीं, वो प्रेम माधुर्य प्रेम। तो दास्य से पहले तो शांतरस है, तो शांतरस में निष्ठा है, मन निष्ठता तो है, ममता का विकास नहीं है, और ममता नहीं है तो वो प्रेम प्रेम नहीं है। कौन रस से सेवा करते हैं उनका रस भी अभी ठीक नहीं है। सनक सनंदन सनातन जानते तो वो सभी बातें हैं, ऐसा कुछ नहीं है यू नहीं जानते, किंतु उनका अपना किस विषय में रस है, उनका शुद्ध क्या सिद्ध देह कैसी है, किस रूप में सेवा करते हैं, ये सब ठीक नहीं है। जैसे रूप गोस्वामी का है, रघुनाथ दास गोस्वामी, सनातन गोस्वामी का है, और लोगों का है, ऐसे इनका नहीं है। तो पर्व्यम स्थित जो परिकर होते हैं उनमें शांत रति होती है, उनकी बुद्धि में भगवान की निष्ठा तो रहती है, ममता का अभाव रहता है। कृष्ण को छोड़कर के और किसी को नहीं जानते, ये निष्ठा है, इसलिए उनको भक्ति में भी उनको भी रख लिया गया। इसलिए दासक तो बतलाया, किंतु दास प्रेम भी एक दो तरह का नहीं होता, बहुत तरह का होता है। इसमें साधारण रूप में जो दास रस लिया जाए, वैकुंठ में भी दास है, अयोध्या में भी हनुमान जैसे दास है, और द्वारकापुरी में उद्धव सांब उग्रसेन इत्यादि सभी तरह तरह के दास हैं। और ब्रज में दास है, ब्रज का जो दास है ये शुद्ध है, और लोगों में कुछ ऐश्वर्य ज्ञान गंध वहां के दासियों में। कृष्ण ने कहा है चैतन्य चैतामृत में, जिस प्रेम में सम बुद्धि अथवा हीन बुद्धि होती है कृष्ण में, उसके द्वारा वशीभूत होता है। आया समझ में नहीं? कोई भक्त है वो अपने को कृष्ण से ऊंचा माने, मैं बड़ा हूं, अथवा सम तो जरूर मानना होगा, कृष्ण हमसे छोटा है, बलदेव जी, बलदेव जी का भाव है ना छोटा, और सब सखाओं का भाव क्या है, अरे तुम्ही किसे पढ़ो, तुम्ही आमिष हो। ऐसे भक्ति के अधीन भगवान होते हैं। इसलिए ब्रज के दास्य जो हैं वो कुछ दास्य भाव वात्सल्य भाव युक्त होते हैं, और जगहों में ऐसा नहीं, वो कुछ संभ्रम ज्ञान युक्त में होता है। हनुमान जी राम का आलिंगन नहीं करेंगे, राम भले ही थोड़ा सा आलिंगन कर लें, और हनुमान जी को कोई चीज मीठी लगी तो मुंह से निकाल करके खिला नहीं देंगे, राम के कंधे पर नहीं चढ़ेंगे, राम को अपने कंधे पर चढ़ाएंगे, उनसे बल्कि श्रेष्ठ द्वारका के लोग हैं। वो सेवक कौन है, पांचों पांडव लोग सेवक हैं, उनके साथ में कुछ सख्त भाव मिला है, थोड़ा सा गौरव कुछ भाव। इसलिए दास प्रेम, ब्रज का जो दास प्रेम है वो वात्सल्य मिश्रित है। प्रसाद प्रसाद प्रसाद, इसके लिए दो श्लोक दिए, जन्नाम श्रुति मात्रेन पुमान भवति निर्मल तस तीर्थ पद किम बा दासान्यम एव अवशिष्यते। ये हमारे दुर्वासा ऋषि जी कह रहे हैं अम्बरीश महाराज से, ओहानंद दासानाम महत्तम दृष्टम अद्यवे, ओहो आज मैं महापुरुषों का, भगवान के भक्तों की महिमा आज हमने देखी, मैं डर के मारे भागता रहा और ये भागे नहीं, और हमको पहले से ही क्षमा कर दिए हैं। और उसी के बाद का ये श्लोक है, जन नाम स्तुति मां, ओहो भक्तों की महिमा हम क्या कहें, उनको कौन सा ऐसा चीज है जो नहीं मिला, अतः उनको सभी कुछ मिल गया, उनका जीवन सब प्रकार से कृतार्थ है। जन नाम स्तुति मात्र, जिनके नाम श्रवण करने से ही साधक पवित्र बन जाता है, निर्मल हो जाता है, संसारिक सब प्रकार की आशाएं इत्यादि दूर हो जाता है, कोई भी अपने लिए कुछ रह नहीं जाता है, बस कृष्ण सेवा के उपयुक्त बन जाते हैं। तर्श तीर्थ पद, वो जिनके पदों में तीर्थ है, किम्बा दास, उनके दास में क्या बाकी रह गया,
अम्बरीश तुमको क्या मिलना शेष रह गया, तुमको तो सब कुछ मिल गया है क्योंकि उन प्रभु के दास। इसलिए एक श्लोक मुझे याद नहीं आ रहा, याद है भगवान के भक्तों का ही कितना कितनी महिमा है तो भगवान की कितनी महिमा होगी। अच्छा अच्छा तो अम्बरीश महाराज के लिए ये कह रहे हैं कि आपके लिए कुछ बाकी नहीं रह गया, इसके लिए यमुनाचार्य का एक श्लोक और। यमुनाचार्य कौन है? रामानुज के गुरु। भवंतम एव अनुचरंतं निरंतरं प्रशांत निशेष मनोरथांतर कदाम एकांतिक नित्य किंकर प्रहर्ष्यामि सनाथ जीवितम्। भवंतम एव निरंतरं, जो लोग आपके नित्य किंकर हैं, प्रशांत निशेष, सब कोई भी उनके हृदय में आलसा लालसा नहीं रहते, कृष्ण भक्त शांत, कृष्ण भक्त निष्काम, अतएव शांत भक्ति मुक्ति सकली अशांत। उनका कोई मनोरथ कोई बात दूसरे जगत का, कृष्ण की सेवा के अतिरिक्त और कोई वासना या कृष्ण भक्तों की सेवा के अतिरिक्त वासना कहीं नहीं रह गई, सब प्रकार से निर्मल। ऐसे एकांतिक भक्तों का मैं किंकर कब होऊंगा? मैं ऐसे भगवान के भक्तों को कब प्रसन्न करूंगा अपनी सेवा के द्वारा? तात्पर्य क्या? जब तक कि सब प्रकार के मनोरथ दूर न हो जाए संसार और कृष्ण पर एकांतिक न हो जाए, और वो भी ब्रज के भाव के अनुसार में अनुरूप में हो, महाप्रभु ये चाह रहे हैं ले जाना ब्रज की तरफ में, तो बहुत सहज ही यह रूपानुगा भक्ति होगी, रागानुगा भक्ति होगी और ब्रज में वो भक्ति पाएगा, उसका जीवन सफल हो जाएगा।
So, Chaitanya Mahaprabhu's opinion is, because this bhakti is not very money. It is completely full of sweetness. So, Vairamananda, after speaking about praying, he once began to describe dasya, praying. So a question comes, why is it that this shantaras has been omitted, it has been left out? Because in shantaras, there is nishta, there is attentiveness to Krishna, leaving aside everything else, but there is no mamata. So when there is no mamata, which is the very sarupa of love, the nature of love, then we cannot really say that there is praying. So Srila Gurudev gave the example of the two Kumaras. They are Sankaras Bhaktas. They know everything, but they don't know how to render service by Siddhadeya, like as Rupa and Ravana have shown by their lives. So now, Sri Ramananda Rai, omitting Shantarasa, is discussing dasya praying. There are many types, but the example he's given here is an ordinary type of dasya praying, which is common in Vaikuntha. We see that in Mathura, in Dwaraka, there are many associates of Krishna such as Uddhava, Sambha, and Ugrasena. They also have dasya bhav, but of many different types. So Sri Chaitanya Mahaprabhu explaining, Krishna himself explaining Sri Chaitanya Charitamrita, that if there is love wherein the devotee thinks, oh, I am equal to you, Krishna, or I am even superior to you, you are less than me, then this type of praying can control Krishna. The parents of Krishna, they think that they are his superiors, his guruja. And the friends of Krishna, they say, oh, what kind of big person are you? You are more important than me, we are equal. So this love can control Krishna. We see that Hanuman is also an example of dasya praying, but he has no opportunity to embrace Lord Ram. He cannot give his reverence to Lord Ram. He cannot sleep on the same bed. Therefore, the Pandavas, who associate with Sri Krishna in Dwaraka, they are even superior to Hanuman. So now, Sri Ramananda Rai is giving an example from Srimad Bhagavatam. It's a verse spoken by Durvasa Muni to Amrish Maharaj. When Durvasa Muni had been chased all over the universe by the chakra, finally on the order of Sri Narayan, he came to Amrish Maharaj and gave his pranam there. And Amrish Maharaj prayed, and the Sudarshan chakra went away. So that time, Durvasa Rishi said, Ahohananda Dasmanam, Mahantam Dasmanatyame, Vikavis Opi Yadrajan Mandalani Sanyate. Alas, alas, how wonderful it is today I have seen the glories of the servants of the Supreme Personality of Godhead. Why? Because even though I tried to harm him, I tried to kill him, but what did he do? He prayed for my benefit, for my welfare. So following that verse comes this verse, which is being quoted by Sri Ramananda Rai. Yana Mahashukti Mahakrena Purnam Bhavati Mevala Tashukti Tukarakim Va Dasanam Avasisite. The meaning is, Dharmasa Rishi said, the Supreme Personality of Godhead is so powerful that simply by hearing the sound of his name, one becomes purified. Simply by the touch of his feet, the holy places are manifested. So, if someone is the servant of such a great personality, as Bhagavan, then what is left? Those who have attained the service of that person who is so great, what is there left for them to attain? There's nothing left over for them. They have attained everything. So, after that, Sri Ramananda Rai is giving another example of dasya bhav. It is the verse of Sri Stotra Ratna, composed by Sri Yamunacharya. Yamunacharya is the guru of Sri Ramanujacharya. So he is praying, Bhavantameva Ucharam Nirantara Prashanta Nishesha Manovatantara. It means that the few devotees who are one-pointed, completely fixed in one-pointed service to the lotus feet of their guru, they are completely happy in the service of their Lord. And their mind being one-pointed on their Lord, it has no attraction to anything else whatsoever. They have given up everything. Shankar, Bhakti Mukti Siddhi Kami Sakali Ashankar, it means that only the pure devotees are peaceful. Why? Because they don't have any other desires. They're fully satisfied in the service of the Lord. But all others, those who are Bhakti Mukti Siddhi Kami, those who want centralization, those yogis who want mystic power, and those who want liberation from this world, they're all filled with desire. They have desires for sense gratification, mystic power, and liberation respectively. And therefore, their hearts are never peaceful. Because they're disturbed by desire. So only pure devotees, their hearts are peaceful. So Srila relates that. She tries to associate with devotees like this. Only those who have given up all desire for everything else will be able to attain perfection in devotional service and attain the treasure which is distributed by Sri Chaitanya Mahaprabhu.
Mahaprabhu ji ne Dasharas ki baatein sunkar bole ji aur kuch aa gaya hai to bolo. प्रभु कहे जो हो ये ठीक है, आगे कुछ कहो यदि है तो. और आए कहे सख्य प्रेम सर्वसाध्य साथ, सब साध्यों का साथ ये सख्य रस. उसके उदाहरण के लिए शास्त्र का श्रीमद भागवत का उदाहरण दिया. अब तक जितने उदाहरण दिए गए थे साधकों के उदाहरण दिए गए थे अब तक, अब सख्य कहने पर नित्य परिकरों का, ब्रज के नित्य परिकरों का उदाहरण आए. तो वो उदाहरण स्वरूप श्रीमद् भागवत का एक श्लोक बतला रहे हैं, दसम स्कंद बारहवें अध्याय का, सखाओं के प्रेम की बात. इत्थम सतां ब्रह्म सुखानुभूत्या दास्यां गतानां परदैवतेन मायास्तितानां नरदारकेन साधं विजहरु कृतपुण्यपुञ्जा. क्या तात्पर्य? ओहो कितनी सौभाग्य की बात है, ब्रज के सखा लो सिदाम सुबल मधुमंगल इत्यादि कृष्ण के साथ में विहार करते हैं. तो वो कैसे विहार करते हैं? ऐसा विहार और लोग नहीं कर सकते, संभव उनके लिए नहीं है. अब ये नीचे से आरंभ कर रहे हैं, सतान इतम सतान ब्रह्म सुखानुभूत, जिनके साथ में विहार कर रहे हैं ये सखा लो सिदाम सुबल. अरे वो है कौन? बड़े आश्चर्य के साथ में कह रहे हैं सतान साधु लोग. साधु लोग माने निर्विशेषवादी. कौन से? निर्विशेष ज्ञानी वाले नहीं होंगे, भक्ति मिश्र जो ज्ञानी है, जो बतलाया गया गीता में लभते पराम भक्ति लभते
पराम ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा,
जिसमें भक्ति है और उस भक्ति के बल से कृष्ण के प्रभाव को भी कुछ जानते हैं, ऐसे सतान साधु लोग. अर्थात भक्ति युक्त ज्ञानियों की बात यहां पर कर रहे हैं. वो लोग जिसको अर्थात कृष्ण को ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर ब्रह्म अनुभव ब्रह्म सुख कर, एक ब्रह्म सुख है. क्या है? जे गथान माम प्रपद्यन्ते ताम तथा वो भजाम, जो लोग जैसा हमारा भजन करते हैं मैं उनको वैसे ही गति देता हूं. तो जो लोग ऐसा भजन करते हैं भक्ति के प्रभाव से, भक्ति मिश्र ज्ञान से, कि मैं साहित्य सुख का अनुभव करूं। तो साहित्य सुख क्या है? कृष्ण को ही ब्रह्म के, निर्विशेष ब्रह्म के रूप में दर्शन करते, उसमें केवल ऐसा होता है, हैं तो अलग किंतु कृष्ण उनकी उस बुद्धि को लोप कर देते हैं और समझते हैं, उनको ये समझ में आता है कि मैं ब्रह्म में मिल गया और मैं एकदम ब्रह्म सुख के समान। कृष्ण को ही देखते हैं और कृष्ण ही ऐसा करते हैं योग माया के प्रभाव से उनकी बुद्धि को, जब मैं कृष्ण कृष्ण तो अब अनुभूति अलग से रहती नहीं, ब्रह्म सुख, ब्रह्म की अनुभूति युक्त जो सुख है उसमें दुख नहीं है, एक है सुख। तो ये साधु लोग जो हैं, जिनको ब्रह्मा अनुभव सुख कहते हैं, क्या कृष्ण के साथ में विहार कर सकते हैं? दूसरी कोई वस्तु रहे तब तो, दूसरी कोई वस्तु ही नहीं है, केवल ब्रह्म सुख ही है, क्वालिटी है, किंतु क्या नहीं है? सत्ता उसमें नहीं है, इसलिए क्या विहार कर सकते हैं? अरे सखा लोग कितने सौभाग्य उनके साथ में विहार करते हैं। और दास्यं गतानां, जो उनके दास हैं क्या करते हैं? परदैवतेना, उनके परमाराध्यतम हैं ये भक्तों के। तो जहां ये भाव है मैं उनका, वे हमारे आराध्य हैं, मैं उनका सेवक हूं, तो उनके साथ में विहार संभव नहीं। वो तो उनके परम आराध्य देवता हैं। जैसे जदुपुरी के जादव लोग परदैवत, वो बारह रसों की बात में मल्ला नाम अश्नि निर्णम नरवर उसमें है, वो वहां के पर देवता है, उनके साथ में क्या विहार करेंगे? नाराज करेंगे ना क्या करेंगे? सखा जैसा कृष्ण भी विहार नहीं करेंगे, पर दैवत है। मायाश्रितेन, माया मोहित जो लोग हैं उनके लिए नरदारक है ना, केवल मनुष्य का लड़का है, इसलिए उसको तुच्छ मानते हैं, आराध्य नहीं मानते, उनके साथ विहार भी नहीं करे, उनका तत्व ज्ञान ही नहीं है, वो उनको तुच्छ समझ करके एक साधारण व्यक्ति, ये नंद जसोदाय गोप हैं, उनके एक साधारण पुत्र हैं, उनके साथ में उनकी रुचि ही नहीं होती है विहार करने, इसलिए नरदार के हैं। कित पुण्य पुंजा, और सखा लोग कैसे हैं? सार्धम बीजाहु कृत पुण्य पुंजा, न जाने कौन से कोटि कोटि पुण्य, पुंज माने समूह, कोटि कोटि पुंज पुण्य किया है, जो आज उनके साथ में विहार कर रहे हैं। भाई कैसा विहार? वो विहार कैसा लोभनीय है, तो उसके लिए कह रहे हैं, वन में जाते ही पत्र पुष्पों के द्वारा कृष्ण का श्रृंगार करते हैं और कृष्ण भी उनको श्रृंगार करते हैं पत्र पुष्प। बेत्र बेशानु, बेणु को चोरी कर लेते हैं, कृष्ण ने उनको चोरी कर ली और वो देख न ले, वो पीछे दे दिया, वो पीछे दे दिया, कहां एक माइल चला गया, ये चोरी करते हैं परस्पर परस्पर, उसको दूर कर देते हैं और वो खोजने लगता है, कहता जैसे तुम ये करो तो हम देंगे, कंधे पर बैठा करके ले चलो तो देंगे। कृष्ण की बंसी भी चोरी कर लेते हैं, सखियां भी चोरी कर लेते हैं, कृष्ण दूर जाने पर कौन पहले उनको देखे, कौन पहले पहले उनको स्पर्श करे। पशु पक्षी की बोली बोलते हैं, मयूर की बोली को, कोयल की बोली आचरण उसका अनुकरण करते हैं, मेढक के समान चलते हैं, मेढक जैसे उछल कूद करके चलते हैं, ये सखा लोग वैसे करते हैं। कभी बंदर का पूंछ पकड़ लेते हैं और वो एक पेड़ से दूसरी पेड़ पर कूदा तो ये उसके साथ में कूद करके चले जाते हैं। कभी कभी बगले जैसा एक पैर पर खड़े होकर के तपस्या करने का भाव दिखलाते हैं बगला, और कभी कभी और तरह तरह की लीलाएं। ये है बिहार, कृष्ण का अपन बिहार। स्वच्छंद रूप से गायों के लिए उनको जरूरत नहीं है देखने की, गायें तो खा पी करके अपने आप मस्त हो जाती है, पागुर करते हैं। इसलिए ये और लोगों के लिए शतान, क्योंकि भक्त लोग हैं उनके लिए नरदार के न, जो कि मायाश्रितान नरदार के न, उनके लिए भी संभव कर देंगे। ऐसे कृष्ण इन सखाओं के विहार करते हैं साथ में, उनका कितना बड़ा पुण्य है। किसी पुण्य से हम हुए हैं ये क्या, नंद बाबा किसी पुण्य से हुए नहीं, ये उनके परिकर हैं, नित्य परिकर हैं। बल्कि कभी कभी कृष्ण के या बलदेव जी के काय भी स्वरूप ये लोग हैं, इसमें जीव तत्व भी कुछ बलदेव प्रभु से समाये हुए हैं। अंडरस्टैंड, इसमें कृष्ण के काय व्यूह माने बालदेव जी के काय व्यूह नित्य परिकर सखा लोग हैं, वे लोग जीव तत्व नहीं है। और कुछ बलदेव प्रभु जी से नित्य मुक्त नित्य जीव ही परम मुक्त हैं, जो कृष्ण की मधुर लीलाओं में हैं, वो बलदेव जी के से निकले हैं। और कुछ नित्य परिकर है। इस प्रकार से उनके साथ में ये विहार करते हैं, कितनी लोभनीय चीज है। महाप्रभु यही हो उत्तम, अभी यहां पर बतलाया क्या उत्तम बतलाया, बिना सखरस के वो वशीभूत नहीं हो सकते हैं। इसलिए समय हो गया, अच्छा जाओ। अरे जैसे है तू ब्रज की है, वो लीला कथा में सप्रम गौरव क्या जानती है। ये ब्रज की है, जाओ तुम्हारा साथ फिर माफ है। बहुत अच्छा, ठीक है। ये लोग जितने भी बाधा दे तुम लोग बाधा मानने वाले हो, ठीक ब्रज की। ओ क्विकली क्विकली टाइम ही होगा।
Of Russia, the eternal associate of Russia.
was spoken by Sri Shukadeva Goswami. He's saying, oh, how fortunate are Krishna's friends in Vraja, such as Srila, Subha, Navasana, and others. Why? Because they support with Sri Krishna in so many different ways, which are completely impossible for others. So who are they? Who are those boys? First he said, it comes out of Rama Sukhana Mudra. Those persons are Satam. Here, Satam means Nivisheshwadi. Those who are attracted to the impersonal aspect of the truth. They cannot play with Sukhana. They have no opportunity. They have been described in the verse. Brahmabhuta Pasanatma Nasojati Nakamshati Samasaveshu Bhutishu Narvakti Narvakti Brahm. They may follow the path of Jnana, but unmixing Bhakti with their Jnana. Yashoda Gurudev said, Jnana Mishra Bhakti. Bhakti Mishra Jnana. They follow the path of Jnana, but they mix them Bhakti. And they know about Krishna's power and influence. So they mix Bhakti with their Jnana. But what happens? Oh, when they remember Krishna, at that time they realize Brahma Sukh, the happiness of mixing with Nirvishesha Brahma. Why? Krishna said in Gita, Yaya Kama Prabhupada Kaiva Vajamyaha. If someone approaches him with a particular conception, then Sri Krishna will reciprocate with that. So, it comes up in Brahma Sukhana. Their realization of Krishna, what? Oh, only mixing with Nirvishesha Brahma, with the impersonal aspect of the truth. And they experience happiness from that. There's no suffering in that. But such persons, can they do Bihar? Can they sport with Krishna? It's quite impossible. Because in that Brahma Sukh, in the happiness of liberation, there's no experience of variegated existence.
There is no existence.
There is no existence. No sattva. So, then Shukadeva Goswami is moving to the next category. Itam sattam rama sukhana mudra. Dasyam yathanam paradayatena. Those who are serving in dasya mood, they consider Krishna as paradayata. That means he is their Paramarajasa, he is the supreme object of their worship, he is their Ishtadev. So those who have this mood, they also have no chance to play with Krishna. They cannot do ras or sport with him in any way. So here, some of the one example is members of Yadukul. So then third example, Mayashitaranina.
Naradarakena.
Naradarakena. Nashkalam Naradarakena. Means those who are in Maya. They are taking shelter of Maya, the external energy. How do they see Krishna? They think he's an ordinary human being, ordinary person. They don't have any tattva-jnana. But these coward boys, Sadhavya Jayu Krishna Punya Punya, means they have such intimate friendship with him. After accumulating Krita Punya Punya means heaps and heaps of pious activities. How do they play with him? They decorate Sri Krishna with flowers, and sometimes Krishna also decorates them. Sometimes one of the boys can steal Krishna's flute, and when he tries to get it back, he passes it to another boy behind him. And when he tries to get it from him, that boy passes to another, and to another, and to another, until Krishna's flute is 1 mile away, and he cannot find it. Sometimes they can say, I'm tired, please carry me on your shoulders. Sometimes they compete with each other in a race, who will run and touch Krishna first. Sometimes when they play together, they imitate the movements and sounds of the animals, of the birds, and they jump like frogs. Sometimes they play catching the tail of monkeys and cause the monkeys to jump from tree to tree. But he said, Krita Punya Punya. They've accumulated so much punya, but is this true? Or we cannot say that they have attained this position By accumulating the pious mind, because they are nature parikar. They are Krishna's eternal associates. They are the Jivatattva. They are the Karyamiva of Bhavya Prabhu. Or they are the Nitya Mukta Parikar, who emanated from Bhavya Prabhu.